हम लोग आज आखिरी श्लोक उपदेशामृत के आखिरी श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। कृष्णस्य चहे प्रणय वसति ही प्रियस्य भ्यो पिराधा कुंडम चास्य मुनिभिरभितस् तादृगे विधायै यत्प्रेष्ठैर अपलम सुलभम किं पुनर्भक्ति भाजाम तत्प्रेमिदम सकृदपि सरह स्नातुराविष्करोति। शब्दार्थ को देखते हैं। कृष्णस्य भगवान श्री कृष्ण का उच्चैः अत्यधिक ऊंचा प्रणय वसति ही प्रेम का पात्र प्रियसिभ्यः अनेक प्रियसी गोपिकाओं में से अपि निश्चय ही राधा श्रीमती राधा रानी। तो ये तो समझ में आ गया अर्थ। सारी प्रियसियों में से सारी गोपियों में से श्रीमती राधा रानी सबसे अधिक उच्च ही प्रिय हैं। कुंडम सरोवर च भी अस्याः उनका मुनिभिः मुनियों के द्वारा अभितः सभी प्रकार से तादृक एव उसी तरह व्यधायै वर्णित है। यानी कि मुनियों के द्वारा उसी प्रकार जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी सभी प्रियसियों में सबसे अधिक प्रिय हैं उसी प्रकार से मुनियों के द्वारा ये वर्णित है कि जो उनका सरोवर है वह कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। समझ में आ रहा है। यत जो प्रेष्ठय परमोच्च भक्तों द्वारा अपि भी अलम पर्याप्त असुलभम प्राप्त करना कठिन। तो आप समझ सकते हैं इसका अर्थ क्या है कि ये सरोवर महान महान भक्तों के द्वारा भी प्राप्त करना बहुत कठिन है। पुनः सॉरी किम क्या पुनः फिर भक्ति भाजाम भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के लिए अर्थात यानी जो साधना भक्ति में लगे हैं उनके लिए तो कहना ही क्या। जो प्रेम प्राप्त कर चुके हैं जैसे कि नारद आदि उनके लिए भी राधा कुंड को प्राप्त कर पाना मुश्किल है कठिन है तो फिर साधना भक्ति करने वालों के लिए इस प्रकार की प्राप्ति होना का कहना ही क्या मतलब मुश्किल है बहुत मुश्किल है। तत् वह प्रेम ईश्वर प्रेम इदम यह सकृत एक बार अपि भी सरह सरोवर स्नातः जिसने स्नान कर लिया है आविष्करोति प्रकट कर देता है। ठीक है अनुवाद। अनेक आमोद की वस्तुओं तथा व्रजभूमि की समस्त प्रियसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य निधि हैं। ये तो अब आप समझ ही गए थे श्रीमती राधा रानी का सबसे अधिक प्रेम है और इस कारण से सबसे अधिक प्रिय है वो कृष्ण को। एक और अद्भुत बात है कि जितना भक्त के हृदय में प्रेम होता है उतना उसकी सेवा कृष्ण को और अधिक प्रिय लगती है और इस कारण से उस सेवा से उस भक्त को और अधिक सुख प्राप्त होता है भले ही उसको सुख प्राप्त करने की इच्छा ना हो। कल भक्त बोल रहे थे कि बहुत हैवी हो गया क्लास लेकिन एक्चुअली समझ में आना चाहिए कि जैसे जैसे अभिधेय हम करते हैं भक्ति का तो अपने सुख की चिंता करना अपने आप ही समझ चला जाता है और इससे अपने आप ही सुख मिलता है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं सुख की इच्छा नहीं करूंगा तो सुख मिलेगा नहीं। जितनी मात्रा में हम अपने सुख की चिंता नहीं करेंगे और कृष्ण की इंद्रिय के सुख की चिंता करेंगे तो ये क्या है ये दिखाता है कि हमारे हृदय में प्रेम बढ़ गया है। आत्मेर इंद्र प्रीति वांछा तरी बोले काम कृष्ण प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम। तो जैसे जैसे भक्ति करने से आपकी इंद्रियों के कह सकते हैं वृत्ति भगवान की तरफ बढ़ रही है तो इंद्रिय तृप्ति करने की भावना वो समाप्त हो रही है। जैसे जैसे वो समाप्त होगी वैसे वैसे भगवान की भक्ति को सुख भी अधिक मिलेगा और जैसे जैसे भक्ति का सुख अधिक मिलेगा इंद्रिय विषयों के जो भोग हैं उनके प्रति अरुचि अपने आप समाप्त हो जाती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं एक बात बताना चाह रहा हूं कि भक्ति किसके लिए है। भक्ति उस व्यक्ति के लिए है जो ना बहुत अधिक आसक्त है और ना अधिक बहुत बड़ा त्यागी है। बहुत भोगी व्यक्ति है तो उसके लिए भक्ति करना मुश्किल होगा और बहुत त्यागी है तो भी मुश्किल होगा क्योंकि जो बहुत भोगी है उसके लिए भक्ति की कोई भी तपस्या करना मुश्किल हो जाएगा। आप कहेंगे मंगल आरती उठो करो जप करो, वो भी नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत त्यागी है तो उसके हृदय सख्त हो जाएगा। तो भक्ति करने से क्या होता है, भक्ति करने से वैराग्य अपने आप उत्पन्न होता है, क्योंकि कृष्ण में प्रीति हो जाती है, लेकिन हृदय सख्त नहीं होता। जो ज्ञानी लोग हैं वो बहुत त्याग करते हैं, बहुत सूखा सूखा खाते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा एक ब्रह्मचारी दूध पी के रहता था, लेकिन महाप्रभु के कीर्तन में उसको प्रवेश का अधिकार नहीं था। ऐसा कहीं वर्णन नहीं कि श्रीवास ठाकुर केवल दूध पी के करके रहा करते थे, या श्रीमती राधा रानी केवल दूध पी के रह रही है। ये शुष्क त्याग की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहली बात तो सारी वस्तुएं भगवान की हैं, हम लोग ईश्वर प्रसन्न पढ़ने वाले हैं, तो त्याग क्या कर सकते हैं। तो त्याग की भावना ये व्यक्ति को हृदय को कठोर कर देती है। तो भक्ति किसके लिए है, न जो बहुत त्यागी है और न बहुत भोगी है। इसको आप भक्ति सामने सिद्ध में पढ़ सकते हैं। तो भक्ति करने से अपने आप ही वैराग्य हो जाता है, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यथोक्तम, लेकिन हृदय शुष्क कठोर नहीं होता है। महाप्रभु के बारे में भी आप बता रहे हैं, शिला रूप गोस्वामी के बारे में भी देख सकते हैं। शिला रूप गोस्वामी और जो रघुनाथ गोस्वामी हैं, वो भूल जाते थे खाना। ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्ड बना रहे थे कि मैं कब तक नहीं खाऊंगा, उसके बाद इस प्रकार की भावना से व्यक्ति के हृदय में अहंकार आ जाता है। तो इस प्रकार के त्याग का कोई महत्व नहीं है। भगवान की भक्ति करे, भक्ति के प्रभाव से जब भक्ति में आवेश पड़ेगा, अपने आप ही सारी वस्तुएं खराब लगेंगी। जैसे अभी मैं सोच रहा था कि खाना खाना हमें क्या टाइम वेस्ट लगता है। अभी खाना खाना हमें टाइम वेस्ट नहीं लगता है, लेकिन जब प्रेम बढ़ जाएगा तो खाना खाना भी टाइम वेस्ट लगेगा, सोना भी टाइम वेस्ट लगेगा, एक क्षण भी कृष्ण की सेवा से अलग रहना टाइम वेस्ट लगेगा। तो इसको ये इसे कहते हैं स्वाभाविक वैराग्य। जने तो आशा वैराग्यम ज्ञानम च यह हेतुकम, अपने आप वैराग्य हो जाता है। जैसे आप पेट भर के प्रसाद पा लीजिए तो फिर और कुछ खाने की इच्छा नहीं रहती, लेकिन ये अहंकार नहीं रहता, देखो मेरा पेट भरा हुआ है। कोई अहंकार रहता है? खाली पेट आप कुछ नहीं खाएंगे तो अहंकार आएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है? खाली पेट आप कुछ नहीं खा रहे हैं तो अहंकार आएगा, देखो मैं भूखा हूं लेकिन सहन कर रहा हूं, अर्थात कृष्ण से प्रेम नहीं है, कृष्ण से प्रीति नहीं है और मैं जगत को त्याग रहा हूं, तो अहंकार आएगा। और आता भी है प्राय, इस प्रकार के त्यागी जो होते हैं बड़े क्रोधी हो जाते हैं। आप जानते ही नाग बाबा वगैरह जो भी होते हैं वो त्यागते तो है जगत को, लेकिन क्रोधी बहुत होते हैं। और भगवान के भक्त जो है वो कुछ एक्सटर्नली नहीं त्याग रहे हैं, वो सारी वस्तुओं को भगवान के संबंध में देख करके उनकी सेवा में लगा रहे हैं, तो उनके हृदय में नम्रता रहती है। जैसे अम्बरीश महाराज, अंतर देख रहे हैं दोनों में। तो ये मैं खाली बात कर रहा था कि प्रेम जब बढ़ता है तो अपने आप खुद की इंद्रिय तृप्ति की या सुख की इच्छा अपने आप समाप्त हो जाती है। तो ये चीज है। तो हम खैर वापस श्रीमती राधा रानी के टॉपिक पे आ रहे हैं कि राधा रानी के अंदर ये सबसे अधिक भावना है, सबसे अधिक प्रेम श्रीमती राधा रानी के पास है कृष्ण के प्रति, इसलिए सबसे अधिक प्रिय है। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। ये भी आप लोग समझ ले गए थे, मन भीरभिर तस ताद्र के विदाही, मर जिस प्रकार से श्रीमती राधा रानी प्रिय हैं वैसे राधा कुंड प्रिय हैं। निसंदेह है, राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतएव समान भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन है। अब ये लाइन बड़ी रहस्यमय है कि आप कहेंगे प्रभु जी ₹50 लगता है गोवर्धन जाने में, कठिन क्या है? प्रियत भागवत अमृत पे लिखा है, पूरा वर्णन आ चुका है कि गोलोक और गोकुल में कोई अंतर नहीं है, गोलोक वृंदावन और गोकुल वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भी गोकुल वृंदावन में आ जाएगा उसे वही प्रेम प्राप्त हो जाएगा जो गोलोक में गोलोक वासियों को है। आप पढ़ लीजिएगा बृहद भागवत अमृत में स्पष्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि आपको साधना करना पड़ेगा। जो सच्चा वृंदावन है, जब तक हमारी भोग दृष्टि है हम सच्चे वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। विषय छाड़िए जब कभी शुद्ध हो मन तब श्री वृंदावन। तो इसलिए अभी आप आइएगा, देखिए एक लाइन जब आएगी मैं बोलूंगा उसको बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब तक विषय वासना है राधा कुंड के तट पे रहते हुए भी व्यक्ति राधा कुंड के तट पे नहीं रहने का लाभ प्राप्त करेगा। और इसीलिए मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी आए थे राधा कुंड पे, और बहुत बात हुई थी कि बहुत बड़े प्रचारक हैं, भक्तिविनोद ठाकुर जी के बेटे हैं, तो उन्होंने वो लोग सोच रहे थे कि कुछ रास लीला पे या कृष्ण की लीला पे बोलेंगे, और उन्होंने ईशोपनिषद पे बोलना शुरू किया। इसलिए हम लोग भी उन्हीं के पद का अनुगमन करते हुए कल से ईशोपनिषद पे पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम राधा कुंड के बारे में या राधा कुंड में जाने के अपने को अधिकारी समझें, ईशोपनिषद को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? ईशाभाष्यमिदं सर्वम्, राधा कुंड में तो व्यक्ति रह सकता है लेकिन उसके मन में भावना है, जरा सी भी भोग की भावना है तो व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि सब कुछ भगवान का है, उस पर भोग दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। तो जब तक हम व्यक्ति, ये एक चीज बड़ा मुश्किल है भक्तात्मा के लिए, इसलिए राधा कुंड में प्रवेश करना बहुत कठिन है। और शुद्ध भक्तों के लिए जिनके हृदय में ये इच्छा बिल्कुल नहीं है उनके लिए भी कठिन है। तो फिर सोच लीजिए कि हमारे लिए कितना कठिन है। तो इसलिए खाली फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, भौतिक रूप से पास में जाने से आपको कोई उतना अधिक लाभ नहीं होगा। नहीं तो लोग आपको स्नान करते तो आप रोज देखते ही कि लोग प्रेम प्राप्त हो रहा है, नाच रहे भारा करके दिव्य स्वरूप में, ऐसे तो नहीं होते दिखते हैं। तो इसलिए ये बहुत सतर्क रह करके इसको हमको जाना चाहिए। प्रभुपाद जी मणग्रीव और नलकुबेर के संबंध में वो बोलते हैं कि वो लोग मंदाकिनी में गंगा जी में स्नान कर रहे थे लेकिन काम गंगा जी वाला नहीं कर रहे थे। तो व्यक्ति किस चेतना में, किस चीज के संपर्क में आता है उसके अनुसार उसका उसको लाभ प्राप्त होता है, ध्यान देना चाहिए। समझ रहे हैं ना, गंगा जी पूरा पाप नाश करती है, मंदाकिनी में स्नान कर रहा है लेकिन काम गलत कर रहे हो। तो फिर जैसे वृंदावन में आकर कोई व्यक्ति पाप करता है, सोचेगा वृंदावन में आने से तो पाप कट जाते हैं, तब जानते हैं कि अपराध है, उसकी वजह से फिर उसको दंड भोगना पड़ता है। तो ये सारी चीजों को बड़े सावधानी पूर्वक हैंडल करने वाली बात है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य लोग उसमें स्नान कर रहे थे स्विमिंग पूल की तरह, तो प्रभुपाद जी ने मना कर दिया कि तुम लोग जो है स्नान मत करो, ये अपराध उनके प्रति कर रहे हो, फिर और नीचे जाएगा इससे। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो इसमें कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। अगर ये इतना ही आसान होता तो प्रभुपाद जी 16 माला क्यों कहते करने के लिए, जरा बताइए। आप सोचिए, आपको लग रहा है मेरी बात में डाउट है अगर, तो अगर ये तो बहुत आसान लग रहा है, तो अगर ये ही करना होता तो प्रभुपाद कहते जाओ भाई थोड़ा टिकट कटाओ वृंदावन में स्नान करके आ जाओ। लेकिन माइक माइक पे बोलिए, यस। लेकिन आप जान सकते हैं कि योग्यता क्या है, हृदय पूरा शुद्ध होना चाहिए तभी प्रेम प्रकट होगा। यस,
2003 में जब वृंदावन, जब कॉन्टेक्ट में नहीं था तो मैं वृंदावन आया था, तो मैंने गलती से राधा कुंड में स्नान कर लिया, कहा मेरे अंदर
ये चीज है। तो उसका लाभ तो है, हम ये नहीं कह रहे लाभ नहीं है, लेकिन किस चेतना में हम उसको ग्रहण करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे फिर वही उदाहरण है कि व्यक्ति, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए किसी को पीएचडी करना बहुत अच्छा है लेकिन बीटेक और ट्वेल्थ तो पास करो तब तो पीएचडी कर पाओगे। बीच में आपको है चतनी चट्टान बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है आप कौन है? नहीं, वो आपको पता नहीं कि महात्मा है, लेकिन बाकी हम चेतन चेतावत पढ़ेंगे। तो चेतन चेतावत पढ़ने के लिए कुछ बेस तो होना चाहिए ना। तो उसी प्रकार से अपने हृदय को हम पहले शुद्ध करें। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल तरह से बताते हैं, बहुत अच्छा, कि इस समय हम लोग अपनी भक्ति को इम्प्रूव करें। राधा कुंड भक्ति इम्प्रूव करने के लिए नहीं है, इम्प्रूव मतलब भक्ति को बढ़ाने के, सुधारने के लिए नहीं है। अभी हमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, भक्ति को आस्वादन करने के लिए। तो बहुत उच्च अवस्था में है, बस इसकी महिमा को भी समझ के क्या कह सकते हैं, आदर भाव से जल छिड़क सकते हैं, लाकर के तिलक भी लगा सकते हैं, वो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा सम्मान की भावना रखनी चाहिए। हाँ जी,
जैसे हरि नाम जप करते हैं तो मन नहीं लगता है, फिर भी वस्तु शक्ति उसका फल मिलता है।
यस,
तो वैसे अगर राधा कुंड में अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ है, अगर हम उसका संपर्क करते आचमन करते तो उसका
आचमन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्नान करने के लिए थोड़ा सा बोला जा रहा है कि संभल के स्नान नहीं करिए, या तो गुरु का परमिशन लीजिए फिर स्नान करिए, और वहां पर रहने की योग्यता भी किसी की नहीं, ये मान के चलना चाहिए। और जहां मंदिर में रह रहे हैं राधा रानी राम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताई के सामने हैं, उनको उनकी सेवा कर रहे हैं, उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, यहीं से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता पढ़ के गोलोक वृंदावन की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसको उसी चीज को अच्छे से करना ज्यादा आवश्यक है, बहुत सारी चीजों में भटकना उचित नहीं, यहाँ चला जाऊंगा वहां चला जाऊंगा। वही याद रखिएगा कि चौबे गए छब्बे बनने और दुबे बन के आए, समझते हैं इसका अर्थ। तो मिस्टर नंबर 4 बनना चाहते थे मिस्टर नंबर 6, लेकिन जंप करने के चक्कर में मिस्टर नंबर 2 बन गए। जितनी भक्ति है उतनी भी नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे जिसके हृदय में काम है वह राधा कृष्ण की लीलाओं को सुनेगा भी तो उसको ठीक से नहीं समझ सकता, बिल्कुल समझ नहीं सकता। इसलिए योग्यता चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद ही सुनना चाहिए। तात्पर्य, राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है? यह सरोवर इसलिए पूज्य है क्योंकि यह श्रीमती राधा रानी का है और श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। सिंपल, जो श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय पात्र है वे समस्त गोपियों में से सर्वाधिक प्रिय है। इसी प्रकार उनका सरोवर श्री राधा कुंड भी बड़े बड़े मुनियों द्वारा ऐसे सरोवर के रूप में वर्णित किया गया है जो कृष्ण को साक्षात राधा के ही समान प्रिय है। ये तो एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई समझाना नहीं है। निसंदेह है राधा कुंड तथा श्रीमती राधा के लिए कृष्ण का प्रेम सभी तरह से एक जैसा है। यह राधा कुंड भक्ति में पूरी तरह संलग्न बड़े बड़े पुरुषों तक के लिए अत्यंत दुर्लभ है, तो फिर उन समान भक्तों के लिए क्या कहा जाए जो केवल वैदिक भक्ति के अभ्यास में लगे रहते हैं। अब मैं समझता हूं कि समझाने की जरूरत तो नहीं है, फिजिकली आप जा सकते हैं, ₹50 लगेगा, लेकिन प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को योग्यता चाहिए। जैसे आप लोग सब जानते हो उस कथा को, हमने कई बार सुना है कि अकबर आए थे और उन्होंने बोला कि हरिदास जी से कि क्या सेवा करूं, तो उन्होंने बोला था आप जाकर के केशी घाट का मरम्मत करा दीजिए। तो कहते ये तो बहुत बड़ी सेवा नहीं, लेकिन जब वहां जाकर देखा तो देखा इतने सुंदर सुंदर मणि है वहां पे, एक मणि को खरीदने में उनका पूरा राज्य बिक जाता। तो आप देख सकते हैं कि एक आंतरिक वृंदावन है, एक बाह्य वृंदावन है जिसको हम देखते हैं, दोनों ही जगह से लाभ है, लेकिन अल्टीमेटली इसमें आंतरिक वृंदावन में प्रवेश करने के लिए योग्यता चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त राधा कुंड में एक बार स्नान कर लेता है वह तुरंत कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा प्रेम भाव उत्पन्न कर लेता है। जो जैसे हमारे भक्त ने बोला कौन सी गोपी भाव है आपका? नहीं हुआ, मैंने भी एक बार स्नान किया है वैसे तो भाव में। हम लोग गोविंद कुंड की सफाई कर रहे थे तो उसके बाद फिर पूरी मट्टी लगी, तो हमने कभी गोविंद कुंड की सफाई करी है, थोड़ा सेवा की है, तो अपने अपने मन से अपना अधिकार बना लिया और कहा भाई राधा कुंड में जाकर स्नान कर लेना चाहिए। और नहीं नहीं गोविंद कुंड की बस हो रहा था, और एक बार राधा कुंड का भी क्लीनिंग हो रहा था, तब भी हम लोग उसमें प्रवेश किए थे सेवा के लिए, मुझे याद है 2013 में ऐसा कुछ हुआ था। तो खैर, लेकिन अभी देख सकते हैं कि प्रेम भाव नहीं और ही भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो अभी तो बहुत दूर है, इसलिए भगवान का नाम जप ही अभी हमारे लिए आवश्यक है। श्रील रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि यदि कोई राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से भी से ना भी रह सके तो कम से कम जितनी बार हो सके इस सरोवर में स्नान तो कर ही ले भक्त, यानी कि अगर आपको अपने गुरु महाराज की आज्ञा है तो फिर आप स्नान करने के लिए जा सकते हैं बहुत आदर भाव से। तो सीनियर वैष्णव से पूछ करके और बड़ी आदर भावना से स्नान करना चाहते हैं तो स्नान कर सकते हैं। जैसे देखिए भगवान श्री कृष्ण के नाम से भी प्रेम उत्पन्न हो जाता है तुरंत, ये भी बोला जाता है एक नाम से कृष्ण प्रेम मिल जाता है, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे अपराध हैं, हमारे हृदय की सफाई होनी है। तो जब ये बोला जा रहा है कि स्नान किया जा सकता है तो स्नान किया जा सकता है, लेकिन और उससे प्रेम भी प्राप्त होगा, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि तुरंत गोपी वाला प्रेम प्राप्त हो जाएगा, मतलब उसके संपर्क होने से अब आप प्रेम की तरफ क्रमशः बढ़ते चले जा रहे हैं, बहुत तेजी से लाभ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि तुरंत प्रेम मिल जाता है। प्रेम की जो कह सकते हैं प्रेम प्राप्ति की जो प्रोसेस है वो क्रमशः ही होता है, और उसको बोला जाता है धर्म के पथ पे चलें और भक्ति करते रहें तो क्रमशः शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। तो चाहे श्रीमद् भागवत में भी तो ऐसे लिखा हुआ, भागवत पढ़ते ही प्रेम प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाता है। तो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? नहीं ऐसे नहीं बोल सकते नहीं हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, ये ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि स्नान करेगा तो प्रेम नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी प्रगति हो रही है, ये चीज है। या फिर बोला जाता है मथुरा में कोई 15 दिन रह लेता है तो भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, सब महिमा में है। तो महिमा गलत नहीं है, लेकिन वो हमारे अपराधों की वजह से या जो भी है भगवान की इच्छा की वजह से धीरे धीरे करके वो उसमें प्रगति होती, ये ध्यान रखना चाहिए। भक्ति संपन्न करने में यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस प्रसंग में श्रील भक्ति ठाकुर जी लिखते हैं कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखियों तथा विश्वास पात्रा दासियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने के इच्छुक हैं उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों सिद्ध देह को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक हैं उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए, उन्हें श्री राधा रानी की विश्वास पात्रा दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार निरंतर श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। देखिए कुछ शब्द बड़े महत्वपूर्ण है तो आपको समझ में आ जाएगा। निरंतर सेवा कौन कर रहा है यहाँ पे? कृष्ण की, हम में से उपस्थित कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, सोना पड़ता है, खाना पड़ता है, बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो आप ये बात समझ लीजिए निरंतर सेवा का अर्थ जो मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ वो ये है कि कम से कम भाव के स्तर पे व्यक्ति रहे। जब वहां पे 24 क्या है उसमें अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी वो कृष्ण की सेवा से वो अलग नहीं रहना चाहता है। तो इसलिए ऐसी अवस्था में प्रभुपाद जी से पूछा भी गया ये कैसे हम ब्रज की गोपियाओं के पदचिन्हों का अनुसरण करें, तो प्रभुपाद जी ने बोला आप कृपया हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहिए, सेवा करते रहिए, एक दिन अपने आप आपके हृदय में सारा ज्ञान प्रकट किया जाएगा। अगर आपको याद है तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि पहले व्यक्ति को अपने आप को सतगुण में स्थित करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आगे क्या ज्ञान जो है उसको प्रकट करा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? उदाहरण के लिए मैथ्स में व्यक्ति को पहले 1+1 2 पढ़ना होता है, उसके बाद उत्तर उत्तर ज्ञान देते हैं, उसका उससे उत्तर ज्ञान देते हैं। हम लोग इंग्लिश में इसे कहते हैं प्री रेक्विजिट, समझते हैं? आईआईटी में कोई आपका कोर्स पढ़ना है तो उससे मान लो लेवल 2 का कोर्स है तो लेवल 1 का कोर्स आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको लेवल 2 समझ में आएगा। जैसे आप संस्कृत में सबसे पहले संधि विच्छेद पढ़ते हैं ना, व्याकरण पढ़ते हैं, पता नहीं शायद संधि विच्छेद व्याकरण में आता होगा, जो भी है तो पहले व्याकरण पढ़ेगा, उसके बाद आगे कुछ पढ़ेगा, फिर आगे कुछ पढ़ेगा, जो नीचे का व्याकरण नहीं पढ़ा आगे की चीज कैसे पढ़ लेगा। तो उसी प्रकार से अपने हृदय को हम शुद्ध नहीं किए हैं तो ये बातें सारे समझ में नहीं आएंगी कि व्रज के व्रज क्या है, तदनार अनुरागी भक्तों का अनुसरण करने का अर्थ क्या है। अगर आपको याद हो तो हमने ही इस भक्ति इसमें उपदेश अमृत में पढ़ा था कि नियमित रूप से आदर के संग और अनुदिनम भगवान के नाम रूप गुण लीला का सेवन करके अविद्या का नाश करके व्यक्ति उसमें टेस्ट जागृत करे, और उसके बाद लिखा था तन्नाम रूप चरिताद सुकीर्तनानु। ये बात आप समझ पा रहे हैं? तो यानी इस स्तर पे अभी हम नहीं हैं। तो अगर कोई राधा कुंड पे रह रहा है तो यानी उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए, कम से कम तन्नाम रूप चरिताद सुकीर्तनानु, उसको लगातार 24 घंटे कृष्ण की सेवा का मतलब बस नाम रूप गुण लीला में वो अब्सॉर्ब होना चाहिए। यही प्रभुपाद बोल रहे हैं, इट इज फॉर रिलिशिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। और ये योग्यता नहीं है तो वहां पे कुछ समय तो कृष्ण कथा सुनेंगे और उसके बाद कुछ और कथा सुनेंगे, वो फिर योग्यता हमारी नहीं है राधा कुंड में रहने की। ऐसे व्यक्ति की योग्यता नहीं, उसको केवल कृष्ण कथा कृष्ण नाम में एकदम रुचि होनी चाहिए, आसक्त होना चाहिए, राग होना चाहिए, तो इसलिए सतर्क रहना चाहिए। आप लोग भाग मत जाना, पता लगा मेरे पे आ जाएगा ये प्रचार कर रहे हैं सब लोग, ठीक है ओके। जो लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संरक्षण भक्ति करते हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी लिखते हैं कि नारद तथा सनक जैसे बड़े बड़े मुनि एवं परम भक्त भी राधा कुंड तक आकर एक बार स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते तो फिर सामान्य भक्तों के विषय में क्या कहा जाए। अब आप इसको समझाने की जरूरत नहीं कि मैं क्या बोला जा रहा है। रियली टू एंटर वृंदाकुंड सॉरी राधा कुंड इन कॉन्शियसनेस, चेतना में राधा कुंड में प्रवेश करना ये इतना आसान नहीं है। इस चीज को गोप कुमार को नारद मुनि बोलते हैं जब वो द्वारका में होते हैं। द्वारका में वो द्वारका मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाले द्वारका, द्वारका में वो नारद मुनि और उद्धव जी को मिलते हैं अकेले में, और वहां पे वो बोलते हैं कि ये उस स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं। गोप कुमार का साख्य भाव है, वो स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारे लिए भी असुलभ है, मतलब मुश्किल है पहुंचना। तो ये चीज, और ये कोई बहुत मतलब ये बहुत भाग्यवान लड़का है गोप कुमार को बोलते हैं, तो आप भी समझ सकते हैं कि उस चेतना को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। उनके मार्गानुगमन में जैसे महाप्रभु ने बताया उसके अनुसार, ठीक है। यदि कोई महान सौभाग्यवश राधा कुंड तक आने और एक बार भी स्नान करने का अवसर प्राप्त कर लेता है तो कृष्ण के प्रति वैसा ही दिव्य प्रेम विकसित कर सकता है जिस तरह गोपियों ने किया था। यह भी संस्तुति की गई है कि मनुष्य राधा कुंड के तट पर निवास करे और भगवान की प्रेममयी सेवा में तल्लीन रहे। ये दूसरी लाइन क्लियर हो गई, योग्यता समझ में आ रही है कि बहुत अधिक भक्ति बढ़ी रहनी चाहिए उसको, बस कृष्ण की सेवा के अलावा और कुछ भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो अब मेरे कहा से उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। हाँ बाइक पे पूछिए अगर कुछ आपने कुछ।
नारद सनक जैसे बड़े बड़े मुनि भी वहां आने का स्नान करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाते, तो बहुत हाई स्टैंडर्ड हो गया।
यस ठीक है,
तो क्या ये बाबा जी जो बाकी हैं,
देखिए पॉइंट ये है कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको वो किसी के मार्गदर्शन में रहने के नहीं रह रहे हैं वो देखना पड़ेगा, और उनको अपनी योग्यता स्वयं चेक कर लेनी चाहिए कि वो क्या उस चीज के लिए योग्य है कि नहीं। हमारा उसमें उनको सिखाने का तो हमारा कर्तव्य नहीं है, अपनी योग्यता में देख लेनी चाहिए कि अभी तो खाने सोने में नींद मतलब क्या कह सकते हैं टेस्ट आ रहा है, अभी तो 24 घंटे आदमी यही सोचता रहता है, तो अभी 16 माला ही करने में व्यक्ति को भारी लग रहा है तो अभी तो बहुत दूर जाना है कि नहीं। जब कम से कम 2 घंटा बीत जाए और 16 माला पता ही नहीं चले, अब इसलिए इसका अर्थ ही नहीं कि तो सुन 2 घंटा सोते रहे लेकिन लेकिन एकदम जैसे एक भक्त हैं वो बता रहे थे कि जब वो इतने उन्नत हैं उन्नत थे भक्ति में आए तो पहले ही वीक में पूरी रात वो जब करते रहे उन्हें मालूम नहीं चला पूरी रात कब बीत गई। हाँ ऐसे बता रहे थे मतलब कि जीवनी में इस प्रकार से लिखा है। तो ये स्थिति है, तो इतना उन्नत भक्त राधा कुंड जाकर नहीं रह रहे हैं, प्रभुपाद जी के आश्रम में रह रहे हैं, तो इसीलिए प्रभुपाद जी के आश्रय में रह करके ही सेवा करना चाहिए, वही हमारे लिए परफेक्ट। कुछ चीजों को दूर से नमस्कार करना और दूर से सम्मान देना ही उचित रहता है, ठीक है। फिर भी हम अपने शुद्धिकरण के लिए पढ़ते हैं, ओके। उसे नियमित रूप से वहां स्नान करना चाहिए और श्री राधा तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। ये भी हुआ है क्या भौतिक धारणाएं? अभी भी सोच रहे ना, पुरुष हैं, भारतीय हैं, तो कहां गायब हुआ? दूसरा चीज आप देख सकते हैं, क्या श्रीमती राधा रानी की सखियों के नाम भी याद है हमको? जब नाम याद नहीं है तो अनुसरण करने की बात छोड़ दीजिए। ललिता विशाखा, उसके बाद तुंग विद्या और चंद्रावली। चंद्रावली उनकी सखी नहीं है? देखिए हाँ, बस आप समझ गए ना कि नाम याद करने में जब इतनी कठिनाई हो रही है तो क्या योग्यता है उनका।
हाँ,
बिल्कुल विषय की चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि अभी ईश्वर परिषद ही समझ में नहीं आया। इसीलिए पर कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि कृष्ण करणामृत श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोले, और श्रीला भक्ति भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत सुंदर ग्रंथ है, कहते हैं आप छापिए लेकिन एक ही कॉपी छापिएगा अपने लिए। क्या मतलब इसका? किसी की योग्यता नहीं है उसको समझ पाने, एक ही किताब छापिए अपने लिए बस। तो कितना रेयर है किसी का किस प्रकार से रियली राधा कृष्ण के प्रेम को समझ पाना। ये सब गुरु की कृपा से आ पाएगा, उनको प्रसन्न करने का, जैसा वो बता रहे हैं वैसा हम करने का प्रयास करें। नहीं तो प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में तो लिख रहे हैं, किसी भक्त को बोले आज तक राधा कुंड में जाकर रहो? कोई रिकॉर्ड है 40-50 साल में कोई भक्त बोला कि प्रभुपाद जी ने मेरे को बोला राधा कुंड में जाकर रहो? किसी को तो नहीं बोला, हम लोग तो आज तक कभी नहीं सुने, कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। प्रभुपाद जी स्वयं भी वहां पर नहीं रहे जाकर के, तो उनके मार्गानुसारण हम लोग को भगवान की भक्ति के प्रचार भी लगना चाहिए। फिर मैं उसके बाद ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि भगवान के प्रति प्रेम का को जो भगवान के प्रति प्रेम होता है वही जीवों के प्रति करुणा होती है। तो भक्तों को अन्य लोगों को कृष्ण भक्ति मिलाने के प्रयास में जो लगा है वो अलग नहीं है कृष्ण प्रेम विकसित करने से, ये ध्यान देना चाहिए। नम्रता और कृष्ण प्रेम ये अलग अलग वस्तुएं नहीं है, तो ये इनमें हम भेद देख रहे हैं, ये भी देख लेना चाहिए कि जिसका भगवान के प्रति प्रेम है वो जीवों के प्रति करुणा में भी लगेगा। अगर जो कहे कि मुझे प्रेम हो रहा है कृष्ण में लेकिन जीवों के प्रति करुणा नहीं, तो प्रेम नहीं हो रहा, वो खोखला दिखाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वैष्णव सेवा, जीव दया और नाम रुचि, ये तीनों इंटर रिलेटेड है, इनको अलग नहीं कर सकते। आप कहेंगे नहीं गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज तो प्रचार नहीं कर रहे थे, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को कौन आज्ञा दी है प्रचार करने का? शिला गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज ने, भक्ति ठाकुर जी ने। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि जिसके हृदय में प्रेम है वो मान लीजिए प्रचार नहीं कर रहा है, या तो क्या कहते हैं जीवों में प्रति करुणा नहीं, वो भले वो स्वयं ना प्रचार करें लेकिन वो अन्य लोगों को एम्पावर कर सकते हैं प्रचार करने के लिए, शक्ति प्रदान कर सकते हैं। यदि कोई जीवन भर इसी तरह संलग्न रहता है तो शरीर छोड़ने पर वह श्री राधा की वैसे ही सेवा करने के लिए भगवान के पास लौट जाएगा जैसे कि उसने अपने जीवन में राधा कृष्ण के किनारे रहकर सोचा था। समझ गए? तो अगर सोच में सेवा की जगह भोग है तो वही पहुंचेंगे जहां हम सोच रहे, और कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि बार बार प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं कि आपकी योग्यता क्या है। अभी तो हम लोग वही वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम अत्याहार उसी मटके हैं और उसी में काफी सारे जन्मों तक अटकना पड़ेगा। निष्कर्ष यह है कि राधा कुंड के किनारे रहना तथा नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है, परफेक्शन है। समझ में आ गया? नारद जैसे महान ऋषि तथा भक्तों के लिए भी इस पद को प्राप्त कर पाना कठिन है। इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं है। राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो जिस दिन हम योग्य होंगे उस दिन स्नान मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो हम लोग आचमन से संतुष्ट रहे नहीं, तो भगवान की कृपा से उपदेशामृत की आज पुस्तक समाप्त हुई। कल से भगवान ने चाहा तो हम लोग ईशोपनिषद पढ़ना शुरू करेंगे। तो जैसा कि राधा कुंड में तो हम पहुंच चुके हैं लेकिन हम लोग ईशोपनिषद नहीं पढ़े हैं, तो शिला भक्ति संत ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए ईशोपनिषद पढ़ेंगे। भगवान फिर वापस थोड़ा बहुत ऊपर चले गए थे तो वापस थोड़ा ग्राउंड पे आएंगे और बेसिक फिलोसफी को सीखने का प्रसन्न, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।